प्रत्येक रचनाकार अपनी रचना को अधिकाधिक मार्मिक, मनोरंजक, हृदयस्पर्शी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया करता है जो वस्तु स्थिति का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और जो रचनाकार के मंतव्य को संप्रेषणीय बनाने में सहज सुलभ होते हैं। कभी कभी शब्द चयन रचना को विकृत, विरूप एवं बोझिल भी बना देता है। इस तरह रचनाओं में शब्द चयन के विविध रूप देखे जाते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार मिलते हैं। छंद की तुक पूर्ति के लिए, पहला, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पत परत उताइल पाऊ। दूसरा, अवसर न खो निठल्ली, बड़ जा विकट निकट बल्ली, अब छोड़ना न लल्ली, कदम अवलंब तू मल्ली। उक्त पंक्तियों में स्वभाव के स्थान पर सुभाव, पांव या पैर के स्थान पर पाऊ, बेल के स्थान पर बल्ली, लाले के स्थान पर लल्ली और मल्लिका के स्थान पर मल्ली शब्द का चयन छंद की तुकपूर्ति के कारण ही हुआ है, जो रचना को बोझिल बना रहा है। शब्दालंकारों के लिए, पहला, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये, अनुप्रास। दूसरा, कवि देव हिये सियरानी सबय, सियरानी को देख सुहाग सनी यमक। तीसरा, बिहग बिहग फिर चहक उठे, ये पुंज पुंज पुनरुक्ति। चौथा, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबय लगी विप्सा। पांचवा, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। श्लेष, ध्वनि प्रभाव के लिए, पहला, कंकड़ कोणित रणित नुपुर थे, प्रसाद। दूसरा, झरझर झरझर निर्झर गिरीश्वर में, घर मरुतर मरु सागर में, सरित तड़ित गति चकित पावन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में, रव घोर कठोर राग अमर अमर में भर निचरोर। अर्थ के सूक्ष्म अंतर के लिए, पहला, पुत्रवती जीवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, तनरु बाज भली बाद बियानी, राम विमुख सुत मेहित हानि। तुलसी, उक्त पंक्तियों में बियानी शब्द का प्रयोग करके तुलसी ने संकेत किया है कि राम विमुख पुत्र पशुतुल्य ही होता है, क्योंकि बियानी शब्द पशुओं के लिए ही आता है। मानवों के लिए जनना, जन्म देना, उत्पन्न होना आदि शब्द आते हैं। दूसरा, अमर मरेगा क्या, तो कितनी गहरी डाल रही है नींव। उक्त पंक्ति में प्रसाद ने अमर शब्द का प्रयोग करके यह संकेत किया है कि देव तो कभी मरते नहीं, परंतु चिंता मनु जैसे देव को भी मारने के लिए उत्पन्न हो गई है। वैसे देव, सुमन, देवता, असुर आदि शब्दों में से अमर का चयन अर्थ के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करने के लिए हुआ है। सार्थक वस्तु व्यंजना के लिए, पहला, सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, प्रसाद। उक्त पंक्ति में तरंग शब्द ऊंची ऊंची लहरों के अभिव्यक्ति के लिए सार्थक है, अतः प्रसाद का लहर, उर्मी, बीच आदि की अपेक्षा तरंग का प्रयोग करना सर्वथा उपयुक्त है। दूसरा, नौढ़ा बाल लहर अचानक उपकुलों के, प्रसूनों के ढिंग रुक कर सरकती है सत्वर पंथ। उक्त पंक्तियों ने पंथ के तरंग, उर्मी, बीच आदि को छोड़कर लहर शब्द का जो चयन किया है वह वस्तु व्यंजना के सार्थक प्रतीत होता है। शब्द चित्र प्रस्तुत करने के लिए, पहला, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। पंथ, उक्त पंक्तियों में मांसहीन, रक्तहीन, अस्थिहीन शब्द गांधी जी के दुबले पतले शरीर का चित्र अंकित करने में पूर्णतया समर्थ है। दूसरा, तब की तारुण्यमयी प्रतिमा, प्रज्ञा पारमिता की गरिमा, इस व्यथित विश्व की चेतनता गौतम सजीव बने आई थी, प्रसाद। उक्त पंक्तियों में तब की तारुण्यमयी प्रतिमा, प्रज्ञा पारमिता की गरिमा तथा व्यथित विश्व की चेतनता जैसे शब्दों से गौतम बुद्ध का सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग की उपयुक्तता के लिए, पहला, नटराज स्वयं थे नित्य निरत, प्रसाद। यहाँ शिव, शंकर, महादेव, पुरारी आदि ने कहकर नाचने के लिए प्रसंग में नटराज शब्द का प्रयोग करना सर्वथा उपयुक्त है। दूसरा, किंतु विरह वृश्चिक ने आकर अब यह मुझको घेरा, गुड़ी गारुड़ी दूर खड़ा तू कौतुक देख न मेरा। गुप्त जी, यहाँ वृश्चिक दर्शन के लिए गारुड़ी अर्थ आत विष को उतारने वाले को पुकारना सर्वथा उपयुक्त है। अस्थानीय रंग देने के लिए, कवियों ने अपने अपने काव्यों में स्थानीय रंग देने के लिए स्थानीय बोलचाल में प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया है। जैसे पंत ने झुंकता सीढ़ी शिशिर काश्वान कहकर सीढ़ी शब्द को, गिरजा कुमार माथुर ने रुंद हंडिया मचिया कठौते लठ गूदड़ बखर लेज फतोही चका हंसिया आदि शब्दों को अगेन घिघी अजरी कर्री कनिया आलते छौने गोख थीगली छीमी कनबतियाँ ढू टीकरा ओक खुदबुद आदि शब्दों को नरेंद्र शर्मा ने हेटा रार काही कौर जोंक बीरन महतारी बासन नाज आदि शब्दों को अपनाकर स्थानीय रंग दिया है। ग शब्द समानांतरता, जहाँ कवि या लेखक समानांतर शब्दों का प्रयोग करके अपनी रचना को अधिकाधिक प्रभावोत्पादक बनाया करते हैं वहाँ शब्द समानांतर होते हैं। जैसे पाला, हंस झिलमिल हो ले तारागन, हंस खिले कुंज में सकल सुमन, हंस बिखरे मधुमरंद के कण प्रसाद। दूसरा, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंदरव, नव नव के नव बिहन वृंद को नव पर नव सर दे निराला। तीसरा, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत शशिकाया रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। पंत, शैली विज्ञान में रूप, शैली विज्ञान के आधार पर जब भाषा में प्रयुक्त रूपों का अध्ययन किया जाता है तब यह देखने का प्रयास किया जाता है कि रूपों के प्रयोग के अंतर्गत कहाँ नवीनता या विपथन अथवा मिश्रण मिलता है, कहाँ रूपों का चयन अधिक मार्मिक मनोरंजक एवं प्रभावोत्पादक है तथा कहाँ पर रूपों का समानांतर प्रयोग करके रचना को अधिकाधिक पठनीय एवं प्रेषणीय बनाया गया है। इस प्रकार शैली विज्ञान की दृष्टि से रूपों के अध्ययन की तीन दिशाएं स्पष्ट ज्ञात होती हैं। क रूप विचलन, ख रूप चयन, ग रूप समानांतरता। क रूप विचलन, कारक लिंग और वचन आदि के आधार पर रूप विचलन अनेक प्रकार का होता है। कारक विचलन, लिंग विचलन, वचन विचलन तथा उपमान विचलन। जैसे कारक विचलन, जहाँ पर कवि या लेखक कारकों का प्रयोग प्रचलित परिपाठ से हटकर किया करते हैं वहाँ उनकी भाषा में कारक संबंधी रूप विचलन देखा जाता है। जैसे पाला, हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई प्रसाद। दूसरा, अविरल दुख है उत्पीड़न। पंत, तीसरा, पंछी में अब नींद भरी है। गिरिजा कुमार माथुर। उक्त उदाहरणों में से पहली पंक्ति में प्रसाद ने ममता का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में किया है जब कीड़ा वहाँ पर श्रद्धा की ममता के कारण खींची चली आई है, अतः करण कारक के स्थान पर ममता का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में किया गया है। दूसरी पंक्ति में दुख का प्रयोग अधिकरण कारक में न करके कर्ता के रूप में किया गया है क्योंकि अविरल दुख में उत्पीड़न होता है। तीसरी पंक्ति में कर्ता के स्थान पर वंशी में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया क्योंकि वंशी नहीं बज रही है, अतः ये सभी कारक विचलन के उदाहरण हैं। लिंग विचलन, जहाँ पर कवि या लेखक अपनी भाषा में प्रचलित शब्द पद्धति से हटकर लिंग का प्रयोग किया करते हैं वहाँ लिंग विचलन होता है। जैसे मर्म वचन सीता जब बोला तुलसी। दूसरा, एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में कर बांस रहा प्रसाद। तीसरा, मूदती नयन मृत्यु की रात खोलती नवजीवन की प्रात। पंत, उक्त पंक्तियों में सीता जब बोली के स्थान पर सीता जब बोला कहकर स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग, तपस्या जैसे पतझड़ में कर बांस रही के स्थान पर तपस्या जैसे पतझड़ में कर बांस रहा कहकर स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग तथा खोखला नवजीवन का प्रात के स्थान पर खोलता नवजीवन का प्रात के स्थान पर खोलती नवजीवन का प्रात कहकर पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का प्रयोग करके लिंग विचलन के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। वचन विचलन, जहाँ पर कवि या लेखक प्रचलित परिपाटी को तोड़कर वचन का प्रयोग किया करते हैं वहाँ उनकी भाषा में वचन विचलन होता है। जैसे पाला कह न सके कुछ बात प्राण था जैसे छूटता। दूसरा लोह यह स्मृति यह श्रद्धा यह हंसी यह आहुत स्पर्श पूत भाव यह मैं यह तुम यह लिख खिलना यह ज्वार यह अडूब उमड़ना सब तुम्हें दिया। तीसरा और उजली बाहों से यह दीवारें नहीं समेट पा रही मुझको। उक्त कविताओं में से प्रथम में प्राण शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है जबकि यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दूसरी कविता में दिए बहुवचन के क्रिया के स्थान पर दिया एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तीसरी कविता में ये दीवाने के स्थान पर एक वचन में यह का प्रयोग और पा रही बहुवचन की क्रिया के स्थान पर पा रही एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ। ये सभी वचन विचलन के द्योतक हैं। उपमान विचलन आधुनिक कवियों ने ऐसे ऐसे नवीन उपमानों का प्रयोग अपनी अपनी रचनाओं में किया है जो छायावाद युग से पूर्व हिंदी कविता में नहीं मिलते और जो सर्वथा नए एवं मौलिक हैं। जैसे प्रसाद ने उठती हुई लहर के लिए नए उपमानों का प्रयोग इस तरह किया है। करुणा की नव अंगड़ाई सी मलया नील की परछाई सी शीतल कोमल चिरकंपन से दुर्लित हठीले बचपन से। ऐसे ही कविवर अज्ञ ने अपनी प्रियसी के सौंदर्य निरूपण के लिए नए उपमान का प्रयोग इस तरह किया है। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कल की चरहरी बाजरी की। इसी भांति कवि अज्ञ ने जब माई से स्फीति राते वासना के पंख से फैली हुई धरित्री निशा की ओर बसे आलोक सी व्यथा आदि पदों में नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। ख रूप चयन प्रत्येक भाषा के व्याकरणिक रूप प्रायः सीमित एवं निश्चित होते हैं अतः रचनाकारों को रूप चयन का अवसर कम मिलता है। फिर भी हिंदी की कृतियों में रूप चयन के अनेक उदाहरण मिलते हैं जैसे भाववाचक संज्ञा के रूप प्रायः भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता य व आई प्रत्ययों का प्रयोग होता है जिनसे मधुरता माधुर्य सुंदरता सौंदर्य निकटता नैकट्य सुष्ठुता सौष्ठव महत्ता महत्व आदि भाववाचक संज्ञा के रूप बनते हैं। परंतु कुछ लेखकों को ता प्रत्यय वाले रूपों के स्थान पर य या व प्रत्यय वाले रूप अधिक अच्छे लगते हैं और अपनी रचना में वे उन्हीं का चयन किया करते हैं जैसे माधुर्य सौंदर्य औदार्य नैकट्य सौष्ठव मार्दर्व महत्व आदि। विशेषण रूप प्रायः विशेषण के लिए भी एक ही अर्थ के द्योतक दो दो रूप मिलते हैं जैसे क्रुद्ध क्रोधित ग्रस्त ग्रसित हृष्ट हर्षित सृष्ट सर्जित संवेद्य संवेदनीय मान्य माननीय आदि। परंतु इनमें से भी रचनाकार अपनी अपनी इच्छा के अनुकूल विशेष रूपों का चयन किया करते हैं जैसे ज्योतित मूर्तित उद्वेलित आदि। विशेषतः पंत जी ने अधिक अपनाए हैं। समस्त एवं असमस्त रूप कुछ कवि एवं लेखकों को अपनी रचनाओं में कभी समास वाले रूपों का चयन अच्छा लगता है तो कभी बिना समास वाले रूप अच्छे लगते हैं। निराला ने राम की शक्ति पूजा नामक कविता के आरंभ में समास वाले रूपों का चयन किया है और अंत में समास रहित रूपों को बनाया है जैसे समस्त रूप प्रतिफल परवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह। असमस्त रूप होगी जय पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तत्सम एवं तद्भव रूप कुछ कवि एवं लेखक अपनी रचना को कोमल सुकुमार एवं सुमधुर बनाने के लिए तत्सम रूपों के बजाय तद्भव रूपों का प्रयोग किया करते हैं जैसे ताराओं की पांति घनी रे प्रसाद खुले भी न थे लाज के बोल पंद तनिक ठहरूं चांद उगाए अगे। उक्त पंक्तियों में पंक्ति के स्थान पर पांति लज्जा के स्थान पर लाज और चंद्र के स्थान पर चांद का प्रयोग करके तद्भव रूपों को अपनाया गया है। क्रिया रूप प्रायः आज्ञा के लिए आना क्रिया के तीन रूप प्रचलित है आ आओ आइए। इसमें से तू के साथ आ तुम के साथ आओ और आपके साथ आइए का प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी कुछ लेखक एवं कवि औपचारिकता एवं अनौपचारिकता की चिंता न करके आप आओ का भी प्रयोग किया करते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार चयन का द्योतक है। विदेशी शब्द रूप हिंदी में आज कितने ही अरबी, फारसी और अंग्रेजी के रूप प्रचलित हैं। इनमें से लेखक एवं कवि उन्हें हिंदी के अनुकूल वचन में ढाल कर प्रयोग करने लगते हैं। जैसे हाकिम का बहुवचन हुक्काम होता है, किंतु हिंदी में हाकिमों का रूप प्रयोग होता है। कागज़ का बहुवचन कागजात होता है, परंतु हिंदी में कागजों का ही प्रयोग प्रचलित है। ऐसे ही मकान का बहुवचन मकानात होता है, परंतु हिंदी में मकानों का ही प्रयोग होता है। ऐसे ही अंग्रेजी के स्टेशन, रेल, बॉक्स, टिकट, मोटर, साइकिल आदि के बहुवचन अंग्रेजी के अनुसार न अपनाकर हिंदी के अनुसार ही अपनाए जाते हैं। जैसे स्टेशनों, रेलों, बक्सों, टिकटों, मोटरों, साइकिलों आदि। ग रूप समानांतरता। शब्द समानांतरता के अंतर्गत कितने ही शब्दों की समानांतरता का रूप निरूपण किया जा चुका है। अतः यहाँ कुछ रूपों की समानांतरता के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जो रचना को अधिक मार्मिक एवं मनोरंजक बनाया करते हैं। जैसे तन जारो मन मारो पर क्या मैं जीवन भी हारो। गुप्त जी असंख्य दबाओं तनाव खींचो और मरोणों को अकिए। सब कुछ की नियति थी, संहति थी, स्वीकृति थी अकिए। बल खाते धरती पर लहराते मडराते चेहरों पर मुक्तिबोध। मैं तो केवल जिया था, मरा था, लड़ा था। लक्ष्मीकांत वर्मा। तेज धार सरपत की कतारों के बीच घूमती थी, कतराती थी, खिलखिलाती थी। सरस्वत दयाल सक्सेना। शैली विज्ञान में वाक्य। शैली विज्ञान के आधार पर जब किसी कृति एवं कृतिकार की भाषा में प्रयुक्त वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, तब यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह रचना में वाक्यों का प्रयोग परंपरा से हटकर हुआ है, कैसे कैसे वाक्यों का चयन किया गया है और किस तरह समानांतर वाक्यों का प्रयोग करके भाषा को अधिकाधिक प्रांजल एवं प्रभावोत्पादक बनाया गया है। इस प्रकार शैली विज्ञान की दृष्टि से वाक्य के अध्ययन की तीन दिशाएं होती हैं। क वाक्य विचलन, ख वाक्य चयन, ग वाक्य समानांतरता। क वाक्य विचलन। किसी भाषा के वाक्यों का शैली वैज्ञानिक अध्ययन करते समय तीन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक तो यह कि वाक्य में कहीं अन्वय संबंधी विचलन का तो प्रयोग नहीं हुआ है, दूसरे कहीं वाक्य के क्रम संबंधी विचलन तो नहीं, और तीसरे यह कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों को प्रचलित पद्धति पर न लिख कर कुछ नवीन ढंग से तो नहीं लिखा गया है। इस तरह वाक्य विचलन में तीन बातें आती, अन्वय विचलन, क्रम विचलन तथा मुहावरे एवं लोकोक्तियों का विचलन। अन्वय विचलन। प्राय व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में तुम के साथ ओ प्रत्यय वाली क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे तुम आओ, तुम जाओ, तुम गाओ, और आपके साथ ये प्रत्यय वाले क्रिया रूपों का प्रयोग होता है, जैसे आप आइए, आप जाइए, आप गाइए आदि। परंतु कविजन इस नियम की परवाह न करके मनमाने ढंग से वाक्यों में क्रिया रूपों का प्रयोग किया करते हैं, इसी को अन्वय विचलन कहते हैं। जैसे आप इसे छुओ, वह कुनमुनाएगा, आप उसे पहुंचो, वह उठ खड़ा होगा। दूसरा, पर यही लोक है तात, आप अवलोको। गुप्त जी। क्रम विचलन। प्रत्येक भाषा में वाक्य अंतर्गत पदों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है, परंतु जहाँ प्रचलित क्रम की चिंता न करके वाक्य में पद रखे जाते हैं, वहाँ क्रम विचलन होता है। जैसे जो कुछ हो मैं न संभालूंगा, इस मधुर भार को जीवन के। प्रसाद, पार ले चल तू मुझको निराला, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार आके। कविताओं में से पहली कविता में तो यह होना चाहिए था, जो कुछ हो मैं जीवन के इस मधुर भार को नहीं संभालूंगा। दूसरी कविता में यह होना चाहिए था, तो मुझ को पार ले चल। तीसरी कविता की पंक्ति में यह होना चाहिए था, लहू की धार डेली देह में चेत उठी। अतः उक्त उदाहरण क्रम विचलन के हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में विचलन। प्रत्येक भाषा में मुहावरे एवं लोकोक्तियां प्रचलित होती हैं, परंतु कविजन इनकी उपेक्षा करके मनमान ढंग से प्रयोग करते हैं, इसी को मुहावरे एवं लोकोक्तियों का विचलन करते हैं। जैसे जाओ ईमान तुड़ा लाओ न, भुना लाओ सारी आस्थाएं। राजनारायण पिसारिया। उक्त पंक्ति में ईमान तो तुड़ा लाओ, आस्थाओं को भुना लाओ, दो मुहावरा का प्रयोग किया गया है, जबकि लोक प्रचलित मुहावरा यह है कि रुपये को तुड़ा लाओ या नोट को भुना लाओ। दूसरा, कहीं करोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा। निराला। लोकोक्ति यह प्रचलित है, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इससे हटकर लीक ने निराला ने उक्त पंक्ति में कहीं करोड़ा कहीं का पत्थर जैसे लोकोक्ति बनाई है। तीसरा, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु पंत, कहावत यह प्रसिद्ध है कि राई से पर्वत करना, अर्थात राई और पर्वत का प्रयोग थोड़े और बहुत या लघु और महान के लिए होता है, परंतु पंत जी ने सरसों और सुमेरु का प्रयोग करके विश्रण को अपनाया है। चौथा, धर्म अर्थ के बीच पड़ गया अमनि व्योम का अंतर, नरेंद्र शर्मा। यहाँ आकाश पाताल का अंतर होना प्रसिद्ध है, परंतु उक्त पंक्ति में अमनि व्योम का अंतर पढ़ना का कविश्रण को अपनाया गया है। ख, वाक्य चयन। प्रत्येक भाषा में किसी एक बात को कहने के लिए अनेक प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। कवि या लेखक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनमें से किसी एक वाक्य का चयन किया करते हैं। इसके लिए कभी कोई रचनाकार साधारण वाक्य का प्रयोग करता है, कोई मिश्रित वाक्य को अपनाता है, कोई संयुक्त वाक्य में अपनी बात कहता है, कोई लघु वाक्य का प्रयोग करता है, कोई बड़े वाक्य पसंद करता है, कोई पूर्ण वाक्य में अपनी बात समाप्त करता है, और कोई अपूर्ण वाक्य द्वारा ही अपना मंतव्य प्रकट कर देता है। इस तरह सभी भाषाओं में वाक्य चयन के लिए बहुत गुंजाइश होती है। हिंदी में भी यही हाल है। यहाँ एक ही बात को विभिन्न ढंग से विभिन्न वाक्यों में कहा जा सकता है, जैसे राजा दशरथ मर गए। इस वाक्य को निम्नलिखित प्रकार के विभिन्न वाक्यों में पृथक पृथक ढंग से इस प्रकार कहा जा सकता है, राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, राजा दशरथ बैकुंठवासी हो गए, राजा दशरथ का निधन हो गया, राजा दशरथ चल बसे, राजा दशरथ ने पंचत्व प्राप्त किया, राजा दशरथ हमारे बीच से उठ गए, राजा दशरथ हमें अनाथ कर गए, राजा दशरथ अयोध्या को सुनी कर गए, राजा दशरथ काल कवलित हो गए, राजा दशरथ नहीं रहे। साधारण संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य। कुछ लेखकों एवं कवियों को साधारण वाक्य अधिक प्रिय होते हैं और वे अपनी बात साधारण वाक्य में कहना अधिक पसंद करते हैं, जैसे राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है आदि। कुछ रचनाकारों को संयुक्त वाक्य अधिक प्रिय होते हैं, जैसे राम पढ़ रहा है और सीता लिख रही है, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और राधा नाच रही है आदि। कुछ रचनाकारों को मिश्रित वाक्य अधिक प्रिय होते हैं, जैसे श्याम ने कहा कि मैं बंसी बजाऊंगा, राधा बोली कि मैं यहाँ नाचूंगी। अतः अपनी अपनी रुचि के अनुसार उक्त ढंग के वाक्यों का चयन रचनाओं में मिलता है। जैसे साधारण, मुस्सा दुर्विध आज कौन है गुप्त जी। संयुक्त, लहरें उठती थी मानो चुभने को मुझको, और सांस लेता था समीर मुझे छूकर। प्रसाद। मिश्रित, बोली रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। निराला। लघु एवं दीर्घ वाक्य। कुछ रचनाकार अपनी बात लघु या छोटे वाक्य में कह देते हैं, जबकि कुछ अपनी बात के लिए दीर्घ एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग किया करते हैं। साधारणतया पंत जी ने लघु लघु वाक्यों का प्रयोग किया, जबकि प्रसाद ने अत्यंत लंबे लंबे वाक्य भी अपनाए हैं। कामायनी के लज्जा स्वर्ग में अंबर चुंबी हम सृंगों से लेकर सपने सब जगते रहे तक 40 पंक्तियों में एक ही वाक्य का प्रयोग हुआ है। नकारात्मक एवं सकारात्मक वाक्य। कुछ रचनाकार अपनी बात कहने के लिए नकारात्मक वाक्य का चयन किया करते हैं और कुछ सकारात्मक वाक्य को अपनाया करते हैं, जैसे राजा दशरथ मर गए यह सकारात्मक वाक्य है, और राजा दशरथ नहीं रहे यह नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक, अभी न होगा मेरा अंत। सकारात्मक, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। निराला। अयोगात्मक एवं योगात्मक वाक्य। कुछ रचनाकार तो अयोगात्मकता या व्यास प्रधान वाक्यों का चयन करना अधिक अच्छा समझते हैं, जबकि कुछ योगात्मक या समास बहुल वाक्यों का प्रयोग करना अधिक रुचिकर समझते हैं, जैसे अयोगात्मक, अंतरिक्ष में अभी सो रही है उषा मधुबाला। प्रसाद। योगात्मक, अनिमेश राम विश्व दिग्विजय सरसंग भाव, विद्वांग बद्ध को दंड मुष्टि खर्म श्राव। निराला। ग वाक्य समानांतरता, जहाँ किसी वाक्य अंतर्गत वाक्यांशों पर बंधों एवं वाक्यों में समानांतर प्रयोग मिलते हैं वहाँ वाक्य समानांतर होती है, जैसे वाक्यों में समानांतरता। पहला, जिसकी दीठ देखती सब कुछ को संभालती दुलारती असीसती। अज्ञे दूसरा, राह रही जहाँ वहाँ पंथ न सूझा चाह रहे जहाँ वहाँ एक न बूझा। निराला, पदों में समानांतरता। पहला, हार बन रहे हूँ प्रिय गले की तुम्हारी में विभूति की गंध की तृप्ति की रिशा। निराला, दूसरा, देखो भूत को जीव प्रसु को हरित हरित वल्लवित मरमरित कुंजित गंजित कुसुमत भू को पंत। उपवाक्यों में समानांतरता, विरोधी कभी कभी बड़े मनोरंजक रूप में मनुष्य के पास धीरे से आता है, अपना समर्थन करने के लिए बाध्य करता है, अवसर देता है, प्रमाण ढूंढ लाता है। प्रसाद, दूसरा, प्रियपति यह मेरा प्यार प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्नता का सहारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। हरिओद। शैली विज्ञान में अर्थ, शैली विज्ञान के आधार पर जब किसी रचना या रचनाकार की भाषा में प्रयुक्त शब्दार्थ का अनुशीलन किया जाता है तब यह देखने का प्रयास किया जाता है कि कहाँ पर लेखक या कवि ने परंपरागत अर्थ से हटकर अन्य अर्थ में शब्दों का प्रयोग किया है, कहाँ कहाँ उसने नए नए अर्थों का चयन किया है और कहाँ पर अर्थगत समानांतरता को अपनाया है। इस दृष्टि से शैली विज्ञान के आधार पर अर्थ के अध्ययन हेतु भी तीन दिशाएँ निश्चित होती हैं, अर्थ विचलन, अर्थ चयन, अर्थ समानांतरता।